नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एम इंजीनियर योहानेस वाइल्ड की पुस्तक फ्रीकैड स्टेप बाय स्टेप एक व्यावहारिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत होती है। इसका घोषित उद्देश्य फ्रीकैड के माध्यम से त्रिआयामी वस्तुएं बनाना, अनेक पुर्जों की असेंबली तैयार करना और उनसे तकनीकी चित्र विकसित करना सिखाना है। यह विषय को डिजाइन की स्वाभाविक कार्य श्रृंखला में रखती है, यानी पहले आकार और माप समझना, फिर पुर्जों का मॉडल बनाना, उसके बाद उन्हें कार्यात्मक संबंधों में जोड़ना और अंत में निर्माण योग्य द्विआयामी दस्तावेज बनाना। फ्रीकैड एक मुक्त स्रोत पैरामेट्रिक मॉडलिंग परिवेश है, इसलिए मॉडल की विश्वसनीयता केवल अंतिम आकृति पर नहीं बल्कि स्केच, बाधाओं और फीचर इतिहास की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। पुस्तक का शीर्षक क्रमिक हाथों से करके सीखने वाली पद्धति का संकेत देता है, अतः इसका उपयोग केवल आदेश याद करने के बजाय डिजाइन से दस्तावेज तक की प्रक्रिया समझने के लिए अधिक उपयुक्त है। यह शुरुआती उपयोगकर्ता और ऐसे स्वशिक्षार्थी के लिए प्रासंगिक है जो मुक्त स्रोत कैड कार्य प्रवाह में प्रवेश करना चाहता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले पैरामेट्रिक त्रिआयामी मॉडलिंग की आधारभूत कार्य पद्धति। पुस्तक का पहला केंद्रीय विषय त्रिआयामी वस्तु निर्माण है, जो फ्रीकैड सीखने की मूल आवश्यकता है। पैरामेट्रिक मॉडलिंग में आकृति को केवल खींचकर स्थिर रूप में नहीं छोड़ा जाता, उसके माप संबंध और निर्माण क्रम को मॉडल में दर्ज किया जाता है। सामान्यतः उपयोगकर्ता पहले द्विआयामी स्केच बनाता है, उसमें लंबाई, दूरी, कोण, समकेंद्रता या सममिति जैसी बाधाएं लगाता है और फिर उसे पैड, पॉकेट, रिवॉल्व या अन्य फीचरों से ठोस रूप देता है। इस पद्धति का व्यावहारिक लाभ यह है कि यदि चौड़ाई, छेद का व्यास या ऊंचाई बदलनी हो तो मॉडल को शुरू से बनाने की आवश्यकता कम होती है। सही तरह बाधित स्केच डिजाइन की मंशा को बनाए रखता है और बाद के बदलावों को अधिक नियंत्रित बनाता है। फ्रीकैड के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉडल वृक्ष और फीचर इतिहास यह बताते हैं कि अंतिम वस्तु किन चरणों से बनी है। सीखने वाले को इसलिए दृश्य परिणाम के साथ निर्माण तर्क भी समझना चाहिए। केवल अनुमानित ज्यामिति जल्दी बन सकती है, लेकिन वह संशोधन असेंबली और तकनीकी चित्र के समय अस्थिर हो सकती है। त्रिआयामी मॉडलिंग को माप, संदर्भ और फीचर क्रम की अनुशासित प्रक्रिया की तरह देखना इस विषय का उपयोगी निष्कर्ष है। दूसरा, स्केच बाधाओं और डिजाइन मंशा से संपादन योग्य पुर्जे बनाना। त्रिआयामी वस्तु के पीछे स्केच और बाधाओं की भूमिका पुस्तक के घोषित चरणबद्ध लक्ष्य का आवश्यक हिस्सा है। किसी पुर्जे का बाहरी आकार देखने में सरल हो सकता है, पर निर्माण योग्य मॉडल के लिए रेखाओं, चापों, वृत्तों और संदर्भों का तार्किक संबंध चाहिए। उदाहरण के लिए, दो छेदों के बीच की दूरी को स्वतंत्र अनुमान के बजाय एक माप के रूप में परिभाषित करने से डिजाइन बदलने पर उनका संबंध बना रहता है। इसी प्रकार सममित विशेषताओं को केंद्र रेखा से जोड़ना या किसी प्रोफाइल को आधार किनारे से संदर्भित करना मॉडल को अधिक स्पष्ट बनाता है। बाधाएं दो काम करती हैं, वे स्केच की अनचाही गति रोकती हैं और यह भी बताती है कि किस माप का डिजाइन में वास्तविक महत्व है। इसीलिए पूर्ण बाधित स्केच को केवल सॉफ्टवेयर की औपचारिकता नहीं समझना चाहिए, यह निर्माण तर्क की जांच है। फ्रीकैड में बाद के फीचर अक्सर पहले वाले स्केच और सतहों पर निर्भर होते हैं। कमजोर संदर्भों पर बना मॉडल संपादन के दौरान त्रुटि दे सकता है या अपेक्षित रूप से नहीं बदल सकता। चरणबद्ध अभ्यास का मूल्य यहाँ यह है कि उपयोगकर्ता पहले स्थिर आधार बनाना सीखता है, फिर उसमें सामग्री जोड़ने, हटाने और किनारों को परिष्कृत करने वाले कार्य करता है। इससे मॉडल केवल दृश्य प्रतिरूप नहीं पुनः प्रयोज्य इंजीनियरिंग डेटा बनता है। तीसरा, अनेक पुर्जों को असेंबली में जोड़ने का कार्यात्मक दृष्टिकोण। पुस्तक के दायरे में असेंबली शामिल होना यह स्पष्ट करता है कि सीखने की सीमा एकल वस्तु तक नहीं रखी गई है। वास्तविक उत्पाद प्रायः अलग अलग पुर्जों से बनते हैं और प्रत्येक पुर्जे का आकार तभी सार्थक होता है जब वह दूसरे पुर्जों के साथ सही स्थिति में काम करे। असेंबली कार्य में भागों को सम्मिलित करना, उन्हें स्थिर या गतिशील संदर्भ देना और उनके बीच दूरी, संरेखण, अक्षीय सतह संबंध निर्धारित करना मुख्य विचार है। उदाहरणार्थ, किसी शाफ्ट और छेद का सह अक्ष होना, दो सतहों का मिलना या एक घटक का किसी निश्चित दूरी पर रहना केवल देखने योग्य व्यवस्था नहीं बल्कि डिजाइन की कार्यात्मक शर्त है। ऐसी शर्तों को संबंधों के रूप में व्यक्त करने से उपयोगकर्ता टकराव, गलत दिशा और अनुपयुक्त फिट जैसी समस्याएं पहले देख सकता है। फ्रीकैड में असेंबली के लिए उपलब्ध कार्यप्रवाह संस्करण और चुने गए कार्यक्षेत्र के अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए किसी एक उपकरण को सार्वभौमिक मानने के बजाय सिद्धांत समझना अधिक टिकाऊ है। पुर्जों की स्पष्ट नामकरण व्यवस्था उपयुक्त मूल बिंदु और स्थिर संदर्भ असेंबली को संभालने योग्य बनाते हैं। यह विषय मॉडलिंग और निर्माण के बीच पुल का काम करता है। इससे सीखने वाला समझता है कि स्वतंत्र पुर्जे बनाना पर्याप्त नहीं है, उनके पारस्परिक संबंध भी डिजाइन का हिस्सा है। चौथा, त्रिआयामी मॉडल से मापयुक्त तकनीकी चित्र तैयार करना। तकनीकी चित्र इस पुस्तक के घोषित दायरे का तीसरा प्रमुख भाग है और यह कैड मॉडल को निर्माण संचार में बदलता है। त्रिआयामी दृश्य किसी वस्तु का रूप समझाने में उपयोगी है, लेकिन कार्यशाला, निर्माता या निरीक्षण प्रक्रिया के लिए प्रायः स्पष्ट प्रक्षेप, माप और टिप्पणियां चाहिए होती है। फ्रीकैड का टेकड्रॉ परिवेश मॉडल या असेंबली से द्विआयामी शीट बनाने, सामने, ऊपर और पार्श्व जैसे दृश्य रखने, पैमाना तय करने तथा आयाम जोड़ने की सुविधा देता है। यहां महत्वपूर्ण अंतर यह है कि चित्र को केवल सजावटी निर्यात नहीं समझना चाहिए। सही दृश्य चयन उस ज्यामिति को स्पष्ट करता है जो निर्माण के लिए आवश्यक है, जबकि अनुचित या भीड़भाड़ वाला दृश्य भ्रम पैदा कर सकता है। मापों को इस तरह रखना चाहिए कि वही जानकारी बार बार ना दोहराई जाए और आवश्यक आकार, छेद, दूरी तथा स्थान स्पष्ट रहे। उपयुक्त शीट टेम्पलेट, प्रक्षेप विधि, दृश्य दिशा और पैमाना दस्तावेज की पठनीयता को प्रभावित करते हैं। तकनीकी चित्रों को PDF, SVG या DXF जैसे उपयोगी स्वरूपों में निर्यात करने की आवश्यकता भी इसी अंतिम चरण से जुड़ती है। इस विषय का वास्तविक मूल्य यह समझाना है कि मॉडल और चित्र एक ही डिजाइन सूचना के दो अलग उपयोग है। एक संपादन और सत्यापन के लिए है, दूसरा निर्माण और साझा करने के लिए। अंत में वस्तु से दस्तावेज तक एकीकृत फ्रीकैड कार्यप्रवाह। इस पुस्तक की सबसे उपयोगी विशेषता उसके शीर्षक में निहित क्रम है, जिसमें वस्तु, असेंबली और तकनीकी चित्र को अलग अलग कौशल नहीं बल्कि एक जुड़े हुए कार्यप्रवाह के रूप में रखा गया है। एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया में पहले डिजाइन की आवश्यकताओं को मापों और संदर्भों में बदला जाता है, फिर प्रत्येक भाग का पैरामेट्रिक मॉडल तैयार होता है। उसके बाद भागों के संबंध असेंबली में जांचे जाते हैं और अंत में वही सत्यापित ज्यामिति दस्तावेजी चित्रों में प्रस्तुत होती है। इस क्रम का पालन करने से बाद में संशोधन अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यदि भाग की मोटाई या छेद का स्थान बदलता है तो उपयोगकर्ता को केवल अंतिम चित्र में बदलाव करने के बजाय मूल मॉडल, संबंधों और संबद्ध दृश्य की स्थिति जांचनी चाहिए। यह दृष्टि अलग अलग फाइलों में असंगत जानकारी बनने का जोखिम घटाती है। मुक्त स्रोत फ्रीकैड का उपयोग करने वालों के लिए यह विशेष लाभकारी है, क्योंकि वे बिना स्वामित्व वाले कैड लाइसेंस के डिजाइन, साझा करने और निर्यात का आधारभूत ढांचा सीख सकते हैं। फिर भी सॉफ्टवेयर की सुविधा अच्छी इंजीनियरिंग निर्णय का विकल्प नहीं है। मापों की उपयुक्तता, सहनशीलता, सामग्री, निर्माण विधि और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं अलग से विचार मांगती है। इसलिए पुस्तक का संभावित सर्वोत्तम उपयोग किसी वास्तविक सीमित परियोजना को मॉडल से चित्र तक ले जाने के अभ्यास में है। यही अभ्यास आदेशों को याद रखने की बजाय दोहराने योग्य डिजाइन अनुशासन विकसित करता है। निष्कर्ष में, फ्रीकैड स्टेप बाय स्टेप उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो फ्रीकैड में शुरुआत कर रहे हैं और केवल एक त्रिआयामी आकृति बनाना नहीं बल्कि मॉडलिंग से असेंबली और तकनीकी चित्र तक का पूरा आधारभूत क्रम समझना चाहते हैं। मैकेनिकल डिजाइन के विद्यार्थी, मेकर, त्रिआयामी प्रिंटिंग के लिए कार्यात्मक पुर्जे बनाने वाले उपयोगकर्ता, और छोटे निर्माण कार्यों के लिए दस्तावेज तैयार करने वाले स्वशिक्षार्थी इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ उस स्थिति में अधिक है जब पाठक सॉफ्टवेयर में हर चरण दोहराए, माप बदले और देखे कि स्केच, फीचर, भाग, संबंध और चित्र किस तरह प्रभावित होते हैं। इस प्रकार सीखने से मॉडल को संशोधित करने की क्षमता विकसित होती है, जो तैयार आकृति की नकल करने से अधिक महत्वपूर्ण है। समान श्रेणी की कई शुरुआती मार्गदर्शिकाएं किसी एक कार्यक्षेत्र, जैसे केवल स्केचिंग या केवल त्रिआयामी प्रिंटिंग पर केंद्रित रहती हैं। इस पुस्तक की घोषित पहचान व्यापक लेकिन क्रमबद्ध दायरे में है, जिसमें वस्तु निर्माण, असेंबली और तकनीकी ड्राइंग एक ही सीखने की यात्रा में आते हैं। यही संयोजन इसे ऐसे पाठक के लिए अलग बनाता है जिसे डिजाइन का दृश्य परिणाम और उसका उत्पादन दस्तावेज दोनों चाहिए, फिर भी इसे इंजीनियरिंग मानकों, सहनशीलताओं या उन्नत निर्माण विश्लेषण का पूर्ण विकल्प नहीं मानना चाहिए। यह उन विषयों के लिए आधार तैयार करने वाली अभ्यास केंद्रित कैड मार्गदर्शिका के रूप में सबसे सार्थक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एमसो एंगेंग, जोहानस वाइल्ड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।